नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् केवलनाणुजोय्य छद्दव्वमणिज्यं पवायिः नमिऊणजिणं भणिमो दौवनियोगं गणियसारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। देखो, यहाँ हम तीसरी पुस्तक अपनी चल रही है, 24 पृष्ठ पर आए हैं। पहले सूत्र में पूछा गया था कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि अनंत है। तो वहाँ अनंत उसका क्या अर्थ है, कितने प्रकार के अनंत होते हैं, आदि हमने विस्तार से चर्चा की कि 11 प्रकार के अनंत होते हैं। तो उसमें से ये जो गणना अनंत है, संख्या की अपेक्षा अनंत, उसकी यहाँ बात चलेगी। तो अनंत भी तीन प्रकार के होते हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो सबसे छोटे में छोटा जो अनंत है उसको कहेंगे जघन्य परितानंत। तो जघन्य परितानंत को हमें वो मालूम है, तो आगे की संख्या कैसे निकालनी है? तो जघन्य परिता संख्या जितनी राशि को विरलन कर दो और उतनी ही राशि देह रूप से देना और आपस में गुणा करना, जिसको कहते हैं वर्गित संवर्गित करना। तो जघन्य परितानंत को वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आती है वह है जघन्य युक्तानंत राशि। और उस जघन्य युक्तानंत का एक वर्ग कर दो तो जघन्य अनंतानंत राशि आती है। अब ये जघन्य अनंतानंत को तीन बार वर्गित संवर्गित कर देना। वर्गित संवर्गित ने पहली बार उसको विरलन और देह रूप से स्थापित करना, उसका जो गुणकार करना, वो एक बार वर्गित संवर्गित हो गया। जो राशि आएगी फिर उसको विरलन और देह रूप से करना और फिर उसका वर्गित संवर्गित, ये दूसरी बार। जो राशि आएगी फिर उसको विरलन करना और देह रूप से देना और फिर आपस में गुणा करना, तो ये तीन बार हो गई। तो ये जो तीन बार किसको किया वर्गित संवर्गित, जघन्य अनंतानंत को। जघन्य अनंतानंत को तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर जो अनंत मध्यम अनंत अनंत का भेद आता है, उससे भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत गुणी है, ये हमने देखा था। अब यहाँ 24 पृष्ठ पर हम आए हैं। ये जो हमने टेबल देखा उसके नीचे से पढ़ेंगे। यह तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशला का राशि, यानी जो तीसरी बार की राशि और जो राशि आई उसकी वर्गशला का, यानी वर्गस्थान में उसका नंबर कौन सा है, तो उसकी जो वर्गशला का राशि है वो प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपर एक भी वर्गस्थान वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम बार जब हम वर्गित संवर्गित करते हैं, वो प्रथम बार वर्गित संवर्गित जो राशि आ गई है जघन्य अनंतानंत को एक बार वर्गित संवर्गित किया, तो जघन्य अनंतानंत का रेस टू जघन्य अनंतानंत, ये पहली बार वर्गित संवर्गित राशि आ गई। अब यहाँ क्या कहते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार, तो तीसरी बार जो हम उसको क्ष कहते, तीसरी बार जो राशि आई है उसकी जो वर्गशला का, उसका जो वर्गस्थान है, वो जो वर्गस्थान है वो क्या कहते हैं, वो वर्गशला का राशि प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपर एक भी वर्ग स्थान वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, यानी इसका जो यहाँ वर्ग होगा उस वर्ग से भी ये वर्गशाला का छोटी है, वो उस वर्ग उपरी वर्ग स्थान को वो प्राप्त नहीं हुई है। ये जो वर्गशाला का नंबर है एक्स, एक्स तो राशि आई, उसका जो वर्गशाला का उसकी होगी, तीसरी बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आती है उसका स्थान कौन सा है वर्ग का, तो ये जो वर्गशाला का राशि है वो भी बहुत अनंत अनंत में चली जाएगी ना, तो वो वर्गशाला का राशि ये जो हमने पहली बार जो वर्गित संवर्गित किया था उसके एक स्थान भी, उसके एक वर्ग स्थान भी आगे नहीं है, यानी इन बिटवीन ये दो है, इन बिटवीन ये दो उसकी वर्गशाला का राशि है। अर्थात अभी अर्थात समझा रहे, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपरी वर्ग के भीतर ही तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि आती है, यानी इसका अगला पॉइंट वर्ग कौन सा होगा, यह हम जघन्य अनंत अनंत रेस टू जघन्य अनंत अनंत कहा। अब ये जघन्य अनंत अनंत रेस टू जघन्य अनंत अनंत जो है उसका वर्ग करना है। हाँ, उसका वर्ग है। अभी तीसरी बार जो अभी हमने राशि देखी, तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर, तीन बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आती है वो जो यहाँ पर हमने लिखी है, एक बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आती है उसके अगला स्थान यानी उसका वर्ग स्थान, तो ये राशि और ये वर्ग राशि इन बिटवीन इसकी वर्गशाला का आती है, यानी वो वर्गशाला का भी कितनी बड़ी होगी। हाँ, ये इन बिटवीन कोई फिगर है, वो इसकी वर्गशाला का है, उसका वर्ग स्थान इतना बड़ा है करने पर उसका वर्गशाला, जघन्य क्या, जघन्य अनंत अनंत को एक बार वर्गित संवर्गित किया उसके बाद उससे कुछ अनंत गुना होगा वो, परंतु उसके अगले वर्ग के कम है, वर्ग से कम है, यानी वर्गशाला का स्थान इतना है तो वो राशि कितनी बड़ी होगी। तीसरी बार वर्गित संवर्गित जो राशि है ना, तीसरी बार वर्गित, आप मेरी बात सुनो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, तीसरी बार जो वर्गित संवर्गित राशि है उसकी वर्गशाला का, एक बार वर्गित संवर्गित राशि के जो वर्ग है उससे और उसके बिटवीन है, अभी हमने उसी को पढ़ा था, फिर पढ़ो अर्थात के आगे देखो, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपरी वर्ग के भीतर ही तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि आती है, यहाँ है ना आपके प्रश्न का उत्तर। हाँ, इसलिए इन दोनों राशि की अर्थात प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का है और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाओं की वर्गशलाकाएं समान है। क्या कहना चाहते, इसकी वर्गशलाका प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका और इसके वर्गशलाका की वर्गशलाका समान है, नहीं समझे, अपना ओरिजिनल गणित लेते हैं, पहला वर्ग 4, दूसरा वर्ग 16, तीसरा 256, चौथा 50, पनट्टी की वर्गशाला का कितनी है 4 है, और वर्गशाला का की वर्गशाला का कितनी है, हाँ 1 है ना, यानी 4 की वर्गशाला का और पनट्टी के वर्गशाला का की वर्गशाला का समान है। वैसे वहां पर क्या समझाते हैं, इसके आगे की वर्गशाला ये वर्ग स्थान है ना, ये आगे का वर्ग स्थान दूसरे नंबर पर आ गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अभी उन्होंने क्या समझाया था, इसकी जो वर्गशाला का है वो इसके और इसके बीच में है, प की जो वर्गशाला का है वो प्रथम और दूसरे स्थान के बीच में है, यानी इसकी भी वर्गशाला का एक है और इसके वर्गशाला का की वर्गशाला का वो भी एक है, तो ये समान है। ये पूरा पढ़ेंगे फिर मैं दोबारा समझाऊंगी। देखो चौथी लाइन से, इसलिए इन दोनों राशियों की, कौन सी दो राशि है, प्रथम वार वर्गित संवर्गित राशि और तृतीय वार वर्गित संवर्गित राशि, यानी प्रथम वार वर्गित संवर्गित राशि की शलाका वर्गशलाका और तृतीय वार वर्गित संवर्गित राशि के वर्गशलाका की वर्गशलाका, ये दोनों समान है। चौथी लाइन से, इसलिए इन दोनों राशियों की अर्थात प्रथम वार वर्गित संवर्गित की राशि की वर्गशलाकाएं और तृतीय वार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाओं की वर्गशलाकाएं समान होती हुई भी वे वर्गशलाकाएं जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी ही होती है। हमने पहले कल ये रूल देखा था, क्या देखा था, ये जघन्य परितानंत के साथ वो तुलना कर रहे हैं। जघन्य परितानंत उसको एक बार वर्गित संवर्गित करते हैं तो जघन्य युक्तानंत आता है, बराबर, और इसको एक बार करेंगे तो जघन्य अनंतानंत आता है। जघन्य अनंतानंत को एक बार वर्गित संवर्गित करेंगे तो ये प्रथम बार की राशि आ गई, वर्गित संवर्गित करेंगे तो जघन्य अनंतानंत रेस्ट जघन्य अनंतानंत। हमने जघन्य परितानंत से शुरुआत की थी, जघन्य परितानंत को एक बार वर्गित संवर्गित करो तो जघन्य युक्तानंत आते हैं, युक्तानंत का एक बार वर्ग कर दो तो जघन्य अनंतानंत आता है। अब जघन्य अनंतानंत को एक बार वर्गित संवर्गित कर दो तो प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि आई, फिर द्वितीय बार और तृतीय बार करेंगे तो कहते हैं इसकी जो वर्गशलाका है, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की जो वर्गशलाका है और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका की वर्गशलाका है, ये समान है, फिर भी क्या है, ये जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है। इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी वो कितने बड़े स्थान पर है उससे असंख्यात गुणी है, यानी वो कितना अनंत बड़ा है, यानी अनंत में जाती है वो संख्या, वर्गशला का भी अनंत है, तो मूल वो राशि कितनी बड़ी होगी। हम कहते हैं वर्गशला का चार है तो राशि पनट्टी हो जाती है, वर्गशला का छह है तो राशि इकट्ठी प्रमाण होती है, 20 डिजिट प्रमाण। तो वर्गशला का जिसकी जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी हो वो मूल राशि कितनी बड़ी होगी, हमें तो यही इमेजिन करना है। हा? फिर से वर्गशला का किसकी है, पनट्टी की वर्गशला का कितनी है, पनट्टी की वर्गशला का कितनी है, वो चार की वर्गशला का कितनी है, चार जो संख्या आई यहाँ उसकी वर्गशला का, वो चार जो संख्या है वो द्विरूप वर्ग धारा में आती है कि नहीं आती है, आती है, तो आती है तो उसकी वर्गशला का कितनी है, एक है। जैसे पनट्टी की तो वर्गशला का चार है परंतु इकट्ठी की वर्गशला का कितनी है, छह है, क्या वो द्विरूप वर्ग धारा में आती है, नहीं आती, ख्याल है ना, ऐसा लेना जिसकी आती हो। अभी चार के बाद सोलह ही, जिसकी वर्गशला का सोलह है वो सोलह की वर्गशला का की वर्गशला का हम कहेंगे ये दो है, वो वर्गशला का राशि द्विरूप वर्ग धारा में आनी चाहिए, इस वर्ग धारा में आनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो वर्गशला का की वर्गशला का इस लाइन में है। तो वर्गशला जो तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि आई उसकी वर्गशला का हमने निकाली, तो वो वर्गशला का वाली फिगर है वो द्विरूप वर्ग धारा में कहाँ आती है, यानी वो वर्गशला का राशि की फिर हमने वर्गशला का ढूंढी, तो वो भी जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है। हाँ? उससे वो असंख्यात गुणी है, यानी इन बिटवीन है, उसके वर्ग के पहले वही है, फिर भी उसकी वर्गशाला का तो उतनी होगी। देखो वर्गशाला का प्रमाण बताया कि एक बार वर्गित संवर्गित है उससे उसकी वर्गशाला का थोड़ी बड़ी है, पर इतनी बड़ी नहीं कि इसके वर्ग के समान हो, बराबर। अब वो जो वर्गशाला का राशि है उसकी वर्गशाला का देखो तो इसके वर्गशाला का के समान ही आती है, और वो उसकी संख्या कितनी है तो जगन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है। चले हाँ। ये पैराग्राफ पूरा करके फिर दोबारा पढ़ेंगे, नीचे से तीसरी लाइन तक आ गए हम। यदि यह तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि संपूर्ण जीवों की वर्गशाला का राशि के समान होती है, ऐसा मान लिया जावे तो क्या कहना चाहते हैं? यदि ये पनट्ठी की वर्गशाला का राशि चार है तो हम मान लेते हैं कि पनट्ठी प्रमाण और क्या है, और कुछ हम एक चीजें मान लेते हैं कि अमुक इतने जो पनट्ठी प्रमाण है। तो यदि हमें किसी संख्या बतानी है कोई, और हम कहते हैं पनट्ठी की वर्गशाला का चार है और विशिष्ट जीवों का प्रमाण की वर्गशाला का भी चार है, तो वो राशि और पनट्ठी राशि समान हो जाएगी, है ना? जिनकी जिनकी वर्गशाला का राशि चार है वो तो समान होनी चाहिए। तो ये वाक्य भी फिर पढ़ेंगे। यदि यह तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि संपूर्ण जीवों की वर्गशाला का राशि के समान होती है, ऐसा मान लिया जावे तो क्या होगा? तो तीन बार वर्गित संवर्गित राशि के समान संपूर्ण जीव राशि भी हो जावे, परंतु ऐसा है नहीं। जीव राशि की बात क्या? मिथ्या दृष्टि जीव भी उससे तीन बार वर्गित संवर्गित से आगे अनंत गुणे हैं, ख्याल है ना? यदि उन दोनों की वर्गशाला का राशि समान होती तो हम मान लेते कि दोनों सेम फिगर है, दोनों वाला अनंत एक ही है। अनंत अनंत में अलग वेरिएशन है, अनंत अनंतों में वेरिएशन है। तो ये जो अभी हमने तीसरी बार वर्गित संवर्गित करने पर जो अनंत अनंत मध्यम अनंत अनंत राशि देखी है उसकी वर्गशाला का और संपूर्ण जीव राशि की वर्गशाला का समान नहीं है। यदि समान होती तो हम कहते कि ये जो संपूर्ण जीव राशि अनंत अनंत कहते हैं तो कितने हैं, तो हम कहते तीन बार वर्गित संवर्गित राशि के समान है, परंतु ऐसा है नहीं, ये बात बता रहे। यह कैसे? उसका उत्तर ये ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा है हो सकता है, उसका समाधान जघन्य अनंत अनंत के उत्तरोत्तर वर्ग करने पर जघन्य अनंत अनंत के अधस्तन वर्ग स्थानों से ऊपर अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है, इस प्रकार परिक्रम में कहा है। क्या कहते हैं? ये जघन्य अनंत अनंत, अब यहाँ प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि, द्वितीय बार वर्गित संवर्गित राशि, तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि, बराबर। अब ये जो जघन्य अनंत अनंत है, देखो यहाँ क्या बताना चाहते हैं। जघन्य अनंत अनंत के उत्तरोत्तर वर्ग करने पर, इसका वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते जाओ, तो उत्तरोत्तर वर्ग करने पर जघन्य अनंत अनंत के अधस्तन वर्ग स्थानों से ऊपर, अधस्तन यानी नीचे की ओर और ऊपर यानी बड़ी संख्या, आगे आगे वाले वर्ग उसको ऊपर कहेंगे और पहले पहले वाले वर्ग जो है उसको हम नीचे कहेंगे, अधस्तन यानी नीचे वाले, यानी टूअर्स जघन्य अनंत अनंत। तो जघन्य अनंत अनंत के बाद वाले कितने स्थान छोड़ना है? अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर, स्टार्टिंग के अनंत वर्गस्थान जाने के पश्चात संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाका उत्पन्न होती है। क्या कहा? जीव राशि की वर्गशलाका कितनी है? जघन्य अनंतानंत के आगे अनंतानंत स्थान जाएंगे, अनंत स्थान जाएंगे, अनंत गुणे स्थान जाएंगे। नीचे के वर्गस्थान और आगे आगे के वर्गस्थान, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, तो जीव राशि की वर्गशलाका कितनी है? जघन्य अनंतानंत के आगे अनंत वर्गस्थान जाने पर जो है वो जीव राशि की वर्गशलाका है, बराबर। अभी अभी हमने तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका कितनी देखी? जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी। ख्याल है डिफरेंस दोनों राशि के वर्गशलाका में? वो इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका थी, ये यहां रखना चाहिए, और इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका उतनी थी। बिल्कुल करना पड़े, वो स्थान,
वो स्थान का वर्गशलाका का स्थान समझना पड़ेगा।
हाँ वैसा ही है। अधस्थन यानी देखो, हम चार का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करेंगे, मान लेते हम दस स्थान तक जाते हैं, तो दस वर्ग स्थानों में पहला दूसरा तीसरा वो अधस्थन वाले वर्ग है, और टूवर्ड्स लोअर। अभी आगे वाले वो तो ऊपर के हैं, हाँ वो टूवर्ड्स टूवर्ड्स जगन्य अनंतानंत जो है वो अधस्थन स्थान के हैं। हाँ, तो कितने बार वर्ग हुआ? तो अनंत बार वर्ग हुआ। ये अधस्तन यानी जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हम अधस्तन कहेंगे, पहले पहले वर्ग, और पश्चात यानी अनंत गुणे बाद वाले वर्ग। हाँ प्रायर भी कह सकते हैं। देखो क्या कहते हैं ये, इसको मैं समाधान फिर पढ़ती हूँ। जघन्य अनंत अनंत के उत्तरोत्तर वर्ग करने पर, यानी वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, हमारी ये द्विरूप वर्ग धारा चल रही है। जघन्य अनंत अनंत के अधस्थान अधस्थन वर्ग स्थानों से ऊपर अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है, इस प्रकार परिक्रम में कहा है। ये परिक्रम का सूत्र है। गुणकार भी जहां जहां अनंत रूप देखने में आता है वहां वहां अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अनंतानंत रूप गुणकार का ग्रहण करना चाहिए। यहां भी जब अनंत का गुणकार कहेंगे तो मध्यम अनंतानंत से गुणा करना। परंतु तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं जघन्य अनंतानंत के अधस्तन वर्ग स्थान से ऊपर परिकर्म सूत्र में कहे गए अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर नहीं उत्पन्न होती है। कहा उत्पन्न होती? किंतु जघन्य अनंतानंत के अधस्तन वर्ग स्थानों से ऊपर कुछ अधिक जघन्य परितानंत गुणे वर्ग स्थान जाकर उत्पन्न होती है। हाँ देखो, ये तृतीय वार वाली इसकी राशि है। हमने देखा था इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका जघन्य, ये प्रथम वार वर्गित संवर्गित वार राशि की जघन जो वर्गशलाका है उसके समान है, और वो कितनी है? जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है, बराबर है ना। तो इसकी वर्गशलाका कितनी है? ये वर्गशलाका की वर्गशलाका इतनी है, तो इसकी वर्गशलाका कितनी है? तो कहते हैं जघन्य अनंतानंत के आगे वाले जो अधस्थन वाले ने पहले पहले वाले जो वर्ग स्थान है उससे थोड़ा ही ज्यादा है, और ये अधस्थन स्थानों से ऊपर अनंत गुणे स्थान जाने पर, यानी जितने अधस्थन स्थानों के वर्ग स्थान है उससे अनंत गुणे आगे चला जाना उतनी उसकी वर्गशलाका है, यानी बहुत अधिक है। जीवों की राशि जो है, जीव राशि की अर्धछेद नहीं, उसकी जो वर्गशलाका राशि है वो जघन्य अनंतानंत के वर्ग के वर्ग के वर्ग करते जाओ तो अधस्तन वर्ग स्थानों से ऊपर अनंत गुणे चले जाना आगे, तो आती है। और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि, इसके बाद वर्ग करते जाओ जघन्य अनंत अनंत का, तो अधस्तन वाले जो वर्ग स्थान है उससे थोड़ा ही अधिक है, यानी इसकी वर्गशाला का राशि से इसकी वर्गशाला का राशि अनंत गुणे हैं। तो वर्गशाला का में इतना अनंत गुणा का डिफरेंस है, तो मूल राशि तो होनी ही चाहिए बहुत बड़ी, क्या है ना। देखो ये पहली लाइन से फिर पढ़ती हूँ 25 पेज पर। परंतु तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला काए जघन्य अनंत अनंत के अधस्तन वर्ग स्थान से ऊपर परिकर्म सूत्र में कहे गए अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर नहीं उत्पन्न होती है। किंतु किंतु कैसे उत्पन्न होती है? जघन्य अनंत अनंत के अधस्तन वर्ग स्थानों से ऊपर कुछ अधिक जघन्य परितानंत गुणे वर्ग स्थान जाकर उत्पन्न होती है। हमने देखा ना जघन्य परितानंत को कुछ गुणा करना, इससे प्रतीत होता है कि संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाकाओं से तीन बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं अनंत गुणी न्यून है, यानी उसके अनंत वे भाग मात्र है वर्गशाला का राशि। हम देखते हैं 16 की वर्गशाला का 2 है और 15 की वर्गशाला का 4 है, तो 4 से ये 16 की वर्गशाला का जो 2 है वो कितने गुणी है, कितने गुणी हीन है, 2 गुणा हीन है, आधी है। और समझो 4 की वर्गशाला का उसकी चौथा भाग है, यानी संख्यात्वा संख्यात गुणा हीन है कहेंगे हम। चौथा भाग है यानी क्या? संख्यात गुणा हीन है, यानी ये 1 से 4 4 गुणा है। वैसे तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि से उसकी जो वर्गशाला का है और यहाँ जीव राशि की जो वर्गशाला का है वो अनंत गुणा है, यानी तृतीय अनंत गुणा का अर्थ क्या हुआ? इसकी वर्गशाला का है तृतीय बार वर्गित संवर्गित, उसके भी अभी आगे चले जाओ, बहुत स्थान आगे चलने के बाद वो जीव राशि की उसका नंबर आएगा। देखो वर्गशाला का में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जब स्क्वायर करते हैं तो वर्गशाला का एक एक से बढ़ती है।
हाँ
मूल राशि में डिफरेंस कितना बड़ा होगा? वर्गशाला का में अनंत गुणा का डिफरेंस है तो मूल राशि की डिफरेंस कितना बड़ा होगा, क्योंकि वर्गशाला का तो मिनिमम यानी एक एक से ही बढ़ती है। अर्धच्छेद भी 2 गुना 2 गुना होता है, परंतु वर्गशाला का में तो एक 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 से बढ़ेगा। और जो तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की जो वर्गशाला का है उससे अनंत गुणे जीव राशि की वर्गशाला का है, यानी जीव राशि की अनंतता का ख्याल आता है अपने। हाँ वर्गशलाकाओं में अनंत गुणे का डिफरेंस है, तो मूल राशि में तो हम खाली अनंत गुणे कहेंगे तो भी वर्गशाला का ही जहाँ अनंत गुणा का डिफरेंस है, मूल राशि में तो अनंत अनंत कितना होगा वो, ख्याल है ना। ये जीव राशि कितनी बड़ी है वो समझाना चाहते हैं। फिर शंका पूछते हैं ऐसा किस कारण से है कि उसकी वर्गशाला का इतनी अनंत गुणी, ऐसा क्यों है? उसका समाधान, जो कि जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से अधिक है, ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाओं के द्वारा जघन्य अनंतानंत के अधस्तन वर्गस्थान से न्यून तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाओं की वर्गशलाकाएं अपरत करने पर कुछ अधिक जघन्य परितानंत आता है। यानी क्या कहना चाहते हैं? ये जो तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका की वर्गशलाका है, हमने देखा तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि के वर्गशलाका की वर्गशलाका, वो हमने कितनी देखी थी, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका के समान देखा था हमने, बराबर है। देखो ये फिर पढ़ते, जघन्य परितानंत के अर्ध छेदों से अधिक है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाओं के द्वारा हमने देखा था। जघन्य परितानंत के अर्ध छेद उससे ज्यादा है ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका, उसके द्वारा जघन्य अनंतानंद के अधस्थान वर्गस्थान से न्यून यानी अधस्थान वर्गस्थान माइनस करना, किसमें से तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाओं की वर्गशलाकाएं, तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की जो वर्गशलाका की वर्गशलाकाएं हैं इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाकाएं, जो प्रथम बार वर्गित संवर्गित की वर्गशलाका के समान थी उसमें से अधस्तन स्थान न्यून कर देना, और वो जो है वो जघन्य अनंतानंत की जो वर्गशलाका है उसके द्वारा उसको अपहृत करना। नहीं समझे, देखो जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका की वर्गशलाका, उसमें से वो आगे अधस्थान स्थान न्यून कर देना कहते हैं, और फिर उस राशि की और यहाँ की राशि की इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका में से अधस्थान राशि न्यून कर देना, और फिर इन दोनों को अपहृत करना, जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका और इसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका जो इतनी है पहली बार वाली है उसमें से भी वो संख्या कम कर देनी है अधस्थान स्थानों की संख्या, और इनको हम बात करेंगे दोनों संख्याओं को एक दूसरे में से। हाँ, अपरत यानी उसमें से बात करो, माइनस करो, कुछ अधिक जघन्य परितानंत आता है, यानी उसका डिफरेंस भी जघन्य परितानंत से ज्यादा है। परंतु जघन्य अनंतानंत के अधस्थान वर्ग स्थानों की अपेक्षा जघन्य अनंतानंत से कुछ अधिक जघन्य परितानंत गुणे वर्गस्थान जाकर संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाकाएं नहीं उत्पन्न होती है, किंतु जघन्य अनंतानंत से अनंतानंत गुणे वर्गस्थान जाकर संपूर्ण जीव राशि की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। क्या कहना चाहते हैं, अभी हमने जो बात देखी थी कि तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाका की वर्गशलाका में से जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका माइनस करो, इसमें से वो अधस्थान वर्गस्थान को न्यून करने पर जो बची है संख्या उसमें से बात करो, फिर भी वो जघन्य परितानंत जितने स्थान बीच में आते हैं वो उससे इतनी ज्यादा है। अब जीव राशि की वर्गशलाका कितनी है, देखो चौथी लाइन से, जघन्य अनंतानंत के अधस्तन वर्ग स्थानों की अपेक्षा जघन्य अनंतानंत से कुछ अधिक जघन्य परितानंत गुणे वर्ग स्थान जाकर, पहले हमने देखा था जघन्य परितानंत गुणे जाकर भी उससे भी वो उसकी वर्गशलाका की वर्गशलाका भी उससे ज्यादा है। अब जीव राशि की वर्गशलाका निकालनी हमको, तो कहते हैं जघन्य अनंतानंत से आगे इतने स्थान चले जाओ तो भी जीव राशि की वर्गशलाकाएं उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है ने वो भी और आगे है, ये चौथी लाइन फिर पढ़ती हो। परंतु जघन्य अनंतानंत के अधस्तन वर्ग स्थानों की अपेक्षा जघन्य अनंतानंत से कुछ अधिक जघन्य परितानंत गुणे वर्ग स्थान जाकर, अनंत गुणे वर्ग स्थान जाकर यहाँ आया था ना शब्द, तो कितने जघन्य परितानंत से भी कुछ अधिक स्थान जाकर संपूर्ण जीव राशि की वर्ग शलाकाएं नहीं उत्पन्न होती है, किंतु कितने स्थान जाने पर, किंतु जघन्य अनंतानंत से अनंतानंत गुणे वर्ग स्थान जाकर। पहले तो वो जो बताया था तो परितानंत से कुछ अधिक था, हाँ, और ये तो मध्यम जघन्य अनंतानंत से अनंतानंत गुणे वर्ग स्थान जाने पर संपूर्ण जीव राशि की वर्ग शलाकाएं उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ख्याल होता है, जीव राशि की वर्ग शलाका कितनी है, जघन्य अनंतानंत से आगे अनंतानंत वर्ग स्थान जाने के बाद जो राशि होगी, दैट इज वर्ग शलाका ऑफ जीव। अकेले जीव राशि वहां है ऐसी बात नहीं है, जीव राशि की वर्ग शलाका भी जघन्य अनंतानंत के आगे अनंतानंत वर्ग स्थान जाने के बाद आती है। है ना, क्योंकि तृतीय बार वर्गित संवर्गित हमको वो राशि बहुत बड़ी लग रही थी, परंतु कहते हैं वो जीव की वर्गशाला का भी कितनी बड़ी है उससे, कि जघन्य अनंतानंत के आगे मध्यम अनंतानंत गुणे स्थान चले जाने पर उसकी वर्गशाला का राशि आती है। ये नंबर ऑफ स्थान, ये वर्ग धारा में क्योंकि अनंतानंत के विषय में गुणकार और भागहार अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अनंतानंत रूप ही होना चाहिए। कहा ना वो अनंतानंत गुणे का अर्थ होता है मध्यम अनंतानंत गुणे। इस प्रकार परिकर्म सूत्र का वचन है, ऊपर जो जघन्य परितानंत से विशेषाधिक कहे आए हैं वह विशेषाधिक असंख्यात रूप है, यह बात असिद्ध नहीं है। वो विशेष अधिक है, कहा वो असंख्यात गुणा अधिक है, इसे समझना, क्योंकि व्यय होने पर समाप्त होने वाली राशि को अनंत रूप मानने में विरोध आता है। क्या कहते हैं, अनंत किसको कहना, जो कितने ही बार व्यय होने पर जिसका अंत नहीं आता है उसको अनंत कहना चाहिए। तो कोई कहेगा इस प्रकार कर्थन करने से अर्धपुद्गल परिवर्तन के साथ व्यभिचार हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, हम कहते हैं इस जीव ने अनादि से कितना समय बिताया है, तो कहते हैं कि अनंत बार पांच परावर्तन किए हैं, एक परावर्तन फिर दूसरा परावर्तन फिर तीसरा परावर्तन। तो कोई पूछेगा कि ये परावर्तन का काल कितना है, तो कहेंगे अनंत है। तो कौन से वाला अनंत है, तो छोटे से छोटा पुद्गल परावर्तन है उसका काल भी अनंत है। तो हमने सुना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अधिक से अधिक कोई सम्यक तो प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व में चला भी जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जरूर पहुंचता है, तो वो भी काल अनंत है। तो यहां प्रश्न अभी हमने जो स्टेटमेंट हुआ ना यहां किया, क्या वे होने पर समाप्त होने वाली राशि को अनंत रूप मानने में विरोध आता है, ऐसा जब कहा तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कोई जीव मोक्ष जाएगा ही समय होने के बाद, ऐसा कहते हैं तो उस अनंत का भी कभी अंत नहीं आएगा तो वो मोक्ष कैसा जाएगा। इसलिए उसके साथ उस कथन के साथ दोष आता है, उसको कहेंगे व्यभिचार दोष। ख्याल में आया क्या कहना चाहते हैं, हाँ।
यहाँ पर नियम ऐसा है, असंख्यात में से एक माइनस करो, उसमें से एक माइनस करो, उसमें से एक माइनस करो, ऐसे असंख्यात में से एक 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 माइनस करते जाएंगे तो कभी न कभी उसका उत्तर जीरो आएगा। लेकिन अनंत में से एक माइनस करो, अनंत बार एक एक माइनस करो, फिर भी जिसका अंत नहीं आता है उसको अनंत कहते हैं, ये बात परिक्रमा में अभी आपने पढ़ी है, फिर से वो पढ़ाइए आप। वही वही बात चल रही है,
हाँ, हाँ,
कि अनंत का अंत कैसा आता है।
हाँ। देखो आगे का पढ़ो, ये देखो, सो भी बात नहीं है, व्यभिचार आएगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि क्या, क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल को उपचार से अनंत रूप माना गया है। उपचार क्यों किया वहां, क्योंकि वो हमारी बुद्धि की बात नहीं, केवल ज्ञानी गम्य है, इसलिए आगे पहले पढ़ते हैं, देखो दोबारा यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, आप कौन सा चयन बताना चाहते थे? वे होने
पर देखिए पेज नंबर 25 पर नीचे से दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं यहाँ पर एक राइट साइड में, क्योंकि व्यय होने पर समाप्त होने वाले राशि को अनंत रूप मानने में विरोध आता है, यानी असंख्यात में से एक एक माइनस करो तो जीरो कभी आएगा, क्योंकि जो उत्कृष्ट संख्यात है उसमें एक मिला दो तो वो असंख्यात हो जाती है, ख्याल में। लेकिन अनंत में क्या कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ व्यय करने पर वर्ष समाप्त होने वाली राशि को अनंत रूप मानने में विरोध आता है, यानी अनंत में से चाहे जितने बार माइनस करो वह कभी व्यय नहीं होगी। इस प्रकार कथन करने से अर्धपुद्गल परिवर्तन के साथ व्यभिचार यानी ये बात खोटी है ऐसा नक्की होता है, तो ऐसा अगर कोई मानेगा या कहेगा सो भी बात नहीं, यानी वो भी सही बात नहीं है। तो क्या है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल को उपचार से अनंत रूप माना है, वो काल भी बहुत बड़ा है लेकिन उपचार से उसको अनंत कहा गया है, ख्याल में। लेकिन सही अनंत तो वही है कि जिसका कभी अंत नहीं आता है, लेकिन वह जो परावर्तनों का जो काल है वो इतना बड़ा है कि क्षयक्षम ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आवे, इसलिए उसको अनंत कह दिया है, इसलिए उसको उपचार से अनंत कहने में आता है।
यानी अर्धपुद्गल परावर्तन या कहीं किसी भी परावर्तन काल में जो हम देखते हैं कि अनंत काल लगता है, तो उसका एक एंड तो हो ही सकेगा, नहीं तो हम दोबारा परावर्तन क्या ऐसे कैसे कह सकते हैं? दो परावर्तन हुए, चार परावर्तन हुए, अनंत परावर्तन हुए, कहेंगे तभी जब एक परावर्तन समाप्त होगा तभी तो दूसरा शुरू हो जाएगा, यानी उस काल को एंड है।
अभी बहुत आसान भाषा में समझना हो तो अनंत दो प्रकार के हैं, एक सक्षय अनंत यानी क्षय के सहित है उसको भी अनंत कहा जाएगा, और दूसरा है अक्षय अनंत यानी जिसका अंत कभी नहीं आएगा। तो वास्तव में निश्चय से तो अक्षय अनंत ही अनंत है, उपचार से सक्षय अनंत को अनंत कहने में आता है।
नहीं, वो केवल ज्ञान गम्य है इसलिए उसको अनंत कहा है। देखो अब शंका 26 पेज पर, जिसमें छह द्रव्य प्रक्षिप्त किए गए हैं वह राशि कौन सी है? पहले ये बात आई थी छह द्रव्य मध्यम अनंत अनंत के बता रहे हैं, तो मध्यम अनंत अनंत में जघन्य अनंत अनंत से शुरू किया था, तीन बार वर्गित संवर्गित राशि भी बताई, तो ये बात ऐसी भी आई थी कि जिसमें छह द्रव्य प्रक्षिप्त किए हैं, छह द्रव्य ने छह राशि जिसमें प्रक्षिप्त किए हैं, प्रक्षिप्त किए ने ऐड की है, जिसमें मिला दी जमा कर उसमें, तो क्या कहते हैं, जिसमें छह द्रव्य प्रक्षिप्त किए गए हैं वह राशि कौन सी है? छह द्रव्य प्रक्षिप्त करना है ने क्या विशिष्ट संख्या उसमें मिलाना है, तो अभी उसके लिए हम छह द्रव्यों में से कौन कौन सी राशि उसमें मिलाना है उसकी बात है। अब ऊपर हम पहले गाथा पढ़ेंगे, सिद्धानि गोद जीवा वनपदी कालो यपोगला चेव सौवमलोगागासम छप्पे देणंत पखेवा। ये छह अनंत राशियां मिलानी है। अभी जो हम अनंत की बात कर रहे हैं उसमें ये छह अनंत राशियां और मिला देना, ऐड कर देना। कौन कौन सी छह राशियां, देखो यहाँ पढ़ते नीचे, तीन बार वर्गित संवर्गित राशि में जघन्य अनंत अनंत को तीन बार वर्गित संवर्गित कर दिया, अब उसमें छह राशियां, छह ये सभी राशियां अनंत है, वो छह अनंत राशियां उसमें और मिला देना। कौन कौन सी है वे राशियां, सिद्ध राशि, निगोद जीव कितने हो गए, हाँ हाँ तो अनंत अनंत ही है ना, एक शरीर में अनंत है, तो निगोद शरीर कितने हैं इस जीव तो ये सब अनंत अनंत राशि, तो निगोद जीवों की राशि, वनस्पति कायिकों की संख्या, वनस्पति कायिक जितने जीव है उन सब की संख्या, पुद्गल, पुद्गल भी कितने हैं अनंतानंद जीव से भी ज्यादा है, हाँ पुद्गल, फिर काल के समय, तीनों काल के समय, भूतकाल वर्तमान एक समय और भविष्य अनंत काल, हमेशा भूतकाल से अनंत गुणा भविष्य काल होगा, एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन मोमेंट, क्या कहा, आज से अनंत काल बाद भी गिनो तो जितना भूतकाल व्यतीत हो गया उससे अनंत गुणा भविष्य काल है, यानी वो कभी संख्यात में भी नहीं आया, संख्यात गुणा में भी नहीं आएगा, अनंत गुणा, यानी कभी नहीं खूंटने वाला ही उसे तो अनंत कहते हम, यानी ऐसा कोई नहीं, नहीं कभी तो एंड आएगा काल को, एंड ही नहीं होता उसी को अनंत कहते हैं, ख्याल है ना, काल का कभी अंत ही नहीं आएगा, निश्चय काल तो द्रव्य है, उसकी संख्या तो असंख्यात है ना, तीन काल के समय का अर्थ क्या है, एक 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 एक, एक समय जिसको व्यवहार काल कहेंगे हम, तीन काल जब कहते हैं तीन काल के समय, उसी से क्या होता है, ये पर्याय की बात है जो व्यतीत होते हैं, द्रव्य तो हमेशा अनादि अनंत है, हैले? और द्रव्यों की संख्या कितनी है, पुद्गल में तो पुद्गल की संख्या ली और काल में काल के समय लिखा है, काल द्रव्य नहीं लिखा है, काल के समय लिखे है।
देखो पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये तो पर्याय की बात है, व्यवहार की बात है, यह व्यवहार काल नहीं है, वो काल के पर्यायों की बात चल रही है। एक बात हम तो जानते हैं कि द्रव्यों का कभी नाश तो होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है, द्रव्य में उत्पाद वे ध्रुवत्व नाम का गुण है, प्रत्येक हो जीव में नहीं, प्रत्येक द्रव्य में, तो उनका द्रव्य का तो कभी नाश नहीं होगा। और ये तीन काल के समय जो है, यानी हर समय परिणमन 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 जो हो रहा है, काल द्रव्य में और उसके अनुसार हम अन्य द्रव्य में भी परिणमन गिनते हैं जीव पुद्गलों में, तो इसका अर्थ ये हो गया तीन काल में ये पर्याय कभी खत्म नहीं होगी, यानी ये विश्व का कभी नाश नहीं होगा जैसा अब हम सुनते हैं, नहीं तो अरे विश्व का नाश हो जाएगा ऐसा होगा और फिर इधर से गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते हैं ना लोग, ये तो प्योर मिथ्या तो है कि जो समझते हैं कि विश्व का नाश होगा, यहाँ तो कहते तीन काल भी कभी नहीं खत्म होंगे, क्योंकि जितने पुद्गलों की संख्या उससे अनंत गुना तो काल तीन काल के समय है, वो तो हमने पहले ही देखा था। यानी जब हम जैन दर्शन का अभ्यास करते हैं तो ये जो कोई खोटी खोटी मान्यता है, भय है लोगों का, वो सारा खत्म हो जाता है, ख्याल में
है? देखो क्या कहते हैं, ये समाधान हमने पढ़ा, हाँ अभी सोलह हमने पढ़ा ना,
देखो यहाँ पर ये शंका लिखी है ना,
शंका आधा ही हो गया,
एक मिनट आधा ही हो गया, शंका जो लिखी उसमें ऐसे शब्द हैं, जिस द्रव्य में जिसमें छह द्रव्य, ये द्रव्य का अर्थ राशियां लेना, द्रव्य का अर्थ वो छह द्रव्य वाले नहीं, राशि, हाँ, और प्रक्षिप्त यानी ऐड किए जाते हैं, वो कौन कौन सी राशियां उसमें, देखो बाद में भी लिखा है सोलवे के अर्थ में, ये छह अनंत राशियां मिला देने पर, यानी ऊपर जो द्रव्य लिखा है राशि यानी भाई नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या, हाँ एक कौन कौन सी राशियां उसमें मिलानी है, तो वो हर एक की बात बताइए, फिर उसमें सिद्ध जीव निगोद जीव उनकी जितनी कोई नंबर ऑफ संख्या होगी उसको उसमें ऐड करने का, किसमें तीन बार जो वर्गित संवर्गित हो गए उसमें,
ये छह द्रव्य प्रक्षिप्त इसने कहां से निकाला शब्द, आया था क्या पहले, नहीं याद, 19 पेज निकालो, नीचे का समाधान देखो, जघन्य अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाकर और उत्कृष्ट अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान नीचे आकर मध्य में जिनेन्द्र देव के द्वारा यथा दृष्ट राशि यहाँ पर अनंतानंत पद से ग्रहण करनी चाहिए, यानी मिथ्या दृष्टियों की संख्या चल रही है, अथवा जघन्य अनंतानंत के 3 बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी, और 6 द्रव्यों के प्रक्षिप्त करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे अनंत गुणी हीन मध्यम अनंतानंत प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि है। ख्याल है ना? उसके बीच में, उसके बीच में जीव राशि भी आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि की बात कर ही रहे हैं, हमने क्या देखा है पुद्गल राशि से जीव राशि कम है कि ज्यादा है? कम है ना, तो यहाँ तो पुद्गल राशि भी मिला रहे, काल के समय भी मिला रहे, आकाश के प्रदेश भी मिला रहे, यानी 6 द्रव्य प्रक्षिप्ति राशि बहुत बड़ी है उससे अनंत गुणा हीन, और 3 बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुणा ऐसी जो मध्यम अनंतानंत है उसका यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये 6 द्रव्य प्रक्षिप्त राशि बताने के लिए, समझाने के लिए, वो मध्यम अनंतानंत के कौन कौन से भेद हैं उसकी बात चल रही है। देखो जघन्य अनंतानंत से 1 वर्गस्थान ऊपर चले जाओ या 1 उसमें ऐड करो तो भी मध्यम के भेद चालू हो गए। उत्कृष्ट तक के सभी भेद मध्यम अनंतानंत के हैं, तो मध्यम अनंतानंत के कुछ दृष्टांत या कुछ दाखले हमें बता रहे हैं। तो उसमें 1 बार वर्गित संवर्गित, 2 बार 3 बार वर्गित संवर्गित, ये राशि भी मध्यम अनंतानंत वाला ही भेद है। अभी 6 द्रव्य प्रक्षिप्त राशि है, अभी यहाँ तक आए हम, इन बिटवीन मिथ्या दृष्टि को उसका भी प्रमाण कहेंगे, जीव राशि का भी प्रमाण कहेंगे, और पुद्गल का उसके आगे होगा, 3 काल के समय उसके आगे होगे, आकाश के प्रदेश उसके अनंतानंत अनंतानंत स्थान ऊपर जाके आएंगे। तो ये सब 6 राशियां उसमें मिला देने पर जो कुछ मध्यम अनंतानंत का भेद आता है उससे अनंत गुणाहीन, और 3 बार वर्गित संवर्गित से अनंत गुणा अधिक, ऐसा इन बिटवीन वाला ये मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण है। तो ये शब्द पहले आया था 6 द्रव्य प्रक्षिप्त राशि, तो शंकाकार ने पूछा है अभी 26 पेज पर, ये 6 द्रव्य प्रक्षिप्त है ना क्या? तो विशिष्ट 6 अनंत उसमें मिलाना है, वो मिलाने पर भी वो अनंत मध्यम अनंतानंत ही रह जाएगा, वो उत्कृष्ट नहीं होगा। ये हमने यहाँ असंख्याता संख्यात के भेद संख्यामान जब हमने सिखाया था यहाँ, या हमने गोमरसार में जब पहले पढ़ा था, तो असंख्याता संख्यात के भी भेद देखे थे। जैसे यहाँ अनंतानंत पर घटा रहे ना जघन्य अनंतानंत, वैसे जघन्य असंख्याता संख्यात पर घटाया था। जघन्य असंख्याता का संख्यात को भी 3.5 बार वर्गित संवर्गित किया था, तब कौन सी राशि आई थी? अग्निकायिक जीवों की संख्या आई थी, और वहां भी ऐसी 6 राशि मिलाई थी उसमें। वहां तो असंख्यात का प्रकरण था, तो उसमें भी असंख्यात वाली 6 राशि मिलाई थी, धर्मद्रव्य के प्रदेश, अधर्मद्रव्य के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश, ऐसे ऐसे 6 असंख्यात राशियां मिलाई थी उसमें। अब यहाँ अनंत का प्रकरण चल रहा है, तो जघन्य अनंतानंत को हम 3 बार वर्गित संवर्गित किया है, और उसमें कौन कौन सी राशियां मिलाई? सिद्ध, वो भी अनंत है, निगोज राशि, अरे एक निगोज शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव है, एक निगोज शरीर में। क्या है ना, तो सिद्ध राशि, अभी 6 राशि कौन सी देखो, एक तो सिद्ध राशि, निगोद राशि, वनस्पति कायिक, पुद्गल, 3 काल के, काल के समय ने तीनों काल के समय, और फिर अलोकाकाश के प्रदेश, वो भी लोकाकाश के तो असंख्यात ही है, मूल पूरा ये आकाश द्रव्य तो अलोकाकाश है, यहाँ लिखने के लिए अलोकाकाश लिख दिया, आकाश के कहो अलोकाकाश के कहो, वो तो सब कितने बड़े अनंत है। तो ये 6 राशियां मिलानी है 3 बार, वो भी एक मध्यम अनंतानंत का भेद आता है, उससे ये हीन है, और 3 बार वर्गित संवर्गित से ज्यादा है। हाँ देखो क्या कहते हैं ये समाधान की दो लाइन हमें पढ़ी, फिर पढ़ती हूँ मैं। तीन बार वर्गित संवर्गित राशि में सिद्ध निगोद जीव, वनस्पति कायिक, पुद्गल, काल के समय और अलोकाकाश, ये छह अनंत राशियां मिला देना चाहिए। उसमें अलोकाकाश मिलाना इसे नहीं, अलोकाकाश में जितने प्रदेश है उतनी संख्या मिला देना। पुद्गल मिलाना इन्हें, पुद्गल जितने अनंतानंत है वही संख्या मिला देना। सिद्धों को मिला देना इन्हें, सिद्ध जीवों की संख्या को मिला देना, ख्याल है ना। हाँ, ये राशियां मिला देना, हम तो ऐसे शॉर्ट में ऐसे ही कहेंगे। शंका बीच बीच में प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त करने योग्य इन छह राशियों के मिला देने पर, छह द्रव्य प्रक्षिप्त राशि होती है उसको क्या कहते हैं, उस संख्या को क्या कहेंगे। देखो अभी मध्यम अनंतानंत के बहुत भेद है, कितने हैं अनंतानंत भेद है, उसको नाम देकर समझाना है। तो जघन्य को हमने लिखा जघन्य अनंतानंत, बीच वाले कुछ संख्या समझानी थी तो एक बार वर्गित संवर्गित राशि, दो बार वर्गित संवर्गित राशि, तीन बार वर्गित संवर्गित राशि, फिर उसके आगे वाली बहुत एक संख्या बतानी है। तो बीच में ये आ जाएगी, जीव राशि आएगी, पुद्गल राशि आएगी, काल राशि आएगी, वो सब बीच में आ जाएगी राशि, और आगे वाला भेद समझाना है। तो तीन बार वर्गित संवर्गित राशि में ये छह राशियां मिलाना है, वो भी एक कोई मध्यम अनंतानंत का कोई विशिष्ट भेद होगा। तो उस संख्या को क्या कहना, तो छह द्रव्य प्रक्षिप्त राशि, क्योंकि ये पूरा झमेला हर बार कैसे हम कहेंगे। तो शॉर्ट में उस विशिष्ट मध्यम अनंतानंत का नाम क्या हुआ, छह द्रव्य प्रक्षिप्त राशि। देखो प्रक्षिप्त करने योग्य इन छह राशियों के मिला देने पर छह द्रव्य प्रक्षिप्त राशि होती है। इस प्रकार तीन बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुणे और छह द्रव्य प्रक्षिप्त राशि से अनंत गुणे हीन इस मध्यम अनंतानंत की जितनी संख्या होती है तन्मात्र मिथ्यादृष्टि जीव राशि है, ख्याल है ना। शंका मिथ्यादृष्टि राशि इतनी है यह कैसे जाना जाता है। ये शंका कर छोड़ने को तैयार नहीं है। समाधान, सूत्र में अनंत ऐसा बहुवचनांत पद दिया है जिससे जाना जाता है कि मिथ्यादृष्टि राशि मध्यम अनंतानंत प्रमाण होती है। ये बहुवचन अनंत जो शब्द आया वो बहुवचन के रूप में वहां लिखा है, इसलिए मिथ्यादृष्टि राशि मध्यम अनंतानंत प्रमाण है, ये ख्याल में आता है। शंका, यह वचन असत्यपने को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है। सूत्र में जो अनंत ऐसा कहा है तो वो झूठ क्यों नहीं हो सकता। समाधान, असत्य बोलने के कारणों से रहित जिनेंद्र देव के मुख कमल से निकले हुए ये वचन है। जिनेंद्र देव कैसे है, असत्य बोलने के कारणों से रहित है, तो असत्य बोलने के कुछ तो कारण होने चाहिए, क्या हो सकते हैं। हाँ, मोह राग द्वेष है ना, और हमारे लिए अज्ञान, अज्ञानी है, छोटा बालक है, वो झूठ बोलेगा, उसको मालूम ही नहीं है। और जो मोह राग या द्वेषी है, राग के कारण या द्वेष के कारण या मोह के कारण, वो झूठ बोलेगा। परंतु ऐसा कोई भी कारण जिनेंद्र देव में विद्यमान नहीं है, पूर्ण वितरागी है वे। तो असत्य बोलने के कारणों से रहित ऐसे जो जिनेंद्र देव है, ऐसे जिनेंद्र देव के मुख कमल से निकले हुए ये वचन है, इसलिए इन्हें अप्रमाण नहीं माना जा सकता, है ना। कि वो वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता हो गई उसकी, हमने ये वाक्य पहले आया था आपने। जो पदार्थ प्रमाण प्रसिद्ध है उसकी दूसरे प्रमाणों के द्वारा परीक्षा नहीं की जाती। सुबह सूर्य ऊपर आया कि नहीं आया, इसलिए हमको बैटरी टॉर्च लेकर बाहर जाकर ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ क्यों अशोक भाई, हाँ। वैसे क्या कहते हैं, जो स्वयं प्रमाण रूप वस्तु है या प्रमाण प्रसिद्ध है जो पदार्थ, उसको प्रूव करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्रमाण प्रसिद्ध वस्तु है। तो जिनेंद्र देव के वचन जो स्वयं प्रमाण है उसको प्रूव करने के लिए दूसरी और कुछ दलीलें देना, प्रमाण बताना इसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण है वो। तो
हम तो कहते हैं जब तक साइंस से प्रूव नहीं होता है हम नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट आजकल के साइंटिस्ट तो शाने हैं ना, तो वो जब तक सही नहीं कहते तो हम नहीं मानेंगे। तो उनको ये वाक्य मालूम नहीं है क्या?
तो जो इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक, आजकल की बात, तो वैज्ञानिक हम किसको कहेंगे कि जिनकी खोज पूरी नहीं होती वो वैज्ञानिक है। यानी वो क्या करते मालूम है, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले जो वहाँ के तब के वैज्ञानिकों ने जो प्रूव किया है उसको रूल आउट कर देते हैं और नई थियोरी सामने लाते हैं। यानी पुराने वैज्ञानिक झूठ हो गए। यानी उसमें क्या हुआ, पूर्वा पर विरोध आ गया। पहले वैज्ञानिकों ने बाद के वैज्ञानिकों ने उनको खालिज कर दिया, रूल आउट कर दिया, उनको झूठा ठहराया। यानी अभी के वैज्ञानिक भी कुछ काल के बाद वे भी झूठे ठहरेंगे, है ना? तो उसको हम प्रमाण मानते हैं जो है नहीं है, और उसके द्वारा जो सर्वथा यानी बिल्कुल प्रमाण प्रसिद्ध है ऐसे जो जिनेंद्र भगवान के वचन है उसको हम इन अप्रमाणिक के द्वारा हम उसको प्रूव करना चाहते हैं। और हमारे माँ, क्योंकि हमने यही पढ़ा है बचपन से, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यही त्रिवार सत्य है, ऐसा देखने में भी आता है। और ये जिनेंद्र देव की बातें को हमारे ख्याल में नहीं आती, ऐसा कहीं देखा ही नहीं, ऐसा कहीं जाना ही नहीं। यहाँ तक कि कहते आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है, होती तो नहीं दिखते, इतने सारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, ख्याल है ना? यानी जैसी हमारी भ्रामक कल्पना है, भ्रम है वहाँ, तो हम पूरी दुनिया ऐसी उल्टी दिखती है और उसी को हम सच मान लेते हैं। तो यहाँ कहते जो प्रमाण है, प्रमाण प्रसिद्ध वस्तु है, कौन सी? जिनेंद्र भगवान के वचन मोस्ट प्रमाणित है, तो उसके लिए दूसरे प्रमाणों के द्वारा परीक्षा नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था हो जाएगी। कहाँ? अपने बुद्धि में। वस्तु में तो कोई अव्यवस्था होने का सवाल ही नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी तो बिल्कुल रहेगी, ख्याल है ना? ये अपने ज्ञान में और उलझने पैदा होती रहेगी और अपने मान्यता में। क्या कहते हैं? अब तीसरा सूत्र आ गया, देखो। हाँ, निगोद में, निगोद कायिक जीव और वनस्पति कायिक जीव अलग अलग लिए। वनस्पति कायिक में तो निगोद आ ही गए, सभी वनस्पति कायिक आ गए उसके अंदर, प्रत्येक भी, प्रतिष्ठित भी अप्रतिष्ठित भी सब। हाँ, देखो अब तीसरा सूत्र कहते हैं, पेज नंबर 27 पर आ गए। अनंतानंता ही ओसप्पिनी उत्सप्पिनी ही न अवहिरंती कालेन, ये हमने पहले रेफरेंस दिया था इसका। देखो इसका अर्थ देखते हैं क्या। काल की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनंतानंत अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों के द्वारा अपहृत नहीं होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवों की जो अनंत संख्या है और जो अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी बीत गई है, जो भूतकाल पूरा ही भूतकाल लेना, जितना अनादि से अभी तक जो जितने समय बीत चुके हैं उसको एक बाजू रखो और मिथ्या दृष्टि जीवों की अनंत राशि एक बाजू रखो, एक समय निकालो, एक मिथ्या दृष्टि जीव ले लो और गणित्री चालू करो, तो काल के समय सब खूंट जाएंगे परंतु मिथ्या दृष्टि जीव नहीं खूटेंगे। तो उसके द्वारा वे अपहृत नहीं होते, बाद नहीं किए जा सकते, उससे भी कई गुना अधिक है, ये बात कहना चाहते। काल की अपेक्षा जब जब कहते हैं, काल की अपेक्षा जब संख्या को कहते हैं, हम कहेंगे ना ये एक मिनट जितने हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, एक मिनट में जितने सेकंड हैं उतने यहाँ लोग बैठे हैं, यानी कितने हैं, 60 बैठे हैं, है ना? वैसे काल की अपेक्षा जहाँ कहाँ गणतरी होती है वहाँ उतने काल में कितने समय बीत गए उसकी संख्या है। कोई भी काल हम कहेंगे ये पल्ले प्रमाण संख्या है, तो एक पल्ले में जितने समय जाते हैं, एक एक समय राशि नहीं, वो उसके असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ वर्ष जाते हैं, वो तो वो कितना बड़ा पल्ले वो समझाया, परंतु जब कोई संख्या हम पल्लों में गिनते हैं, कोई भी संख्या पल्लों में गिनते तो वहां संख्या लेना, उसके समय गिनना, ऐसे कोई मालूम है कोई संख्या पल्लों में गिनते हैं? संख्या हाँ सागर पल्लों में, कौन से पल्ले में? आयुष्य है, वो तो आयुष्य तो समय में है, समय में गिनते हैं, परंतु संख्या को समयों में गिनना है, संख्या को पल्लों में गिनना है। तो द्वीप और सागर की जो संख्या है, मध्यलोक में जो असंख्या द्वीप और सागर है, उसको हम पल्लों में गिनते हैं। कितने हैं सारे द्वीप और सागर, कितने हाँ? असंख्यात क्या? असंख्यात द्वीप समुद्र कितने पल्लों में कितने होते हैं मालूम नहीं है? अढ़ाई अद्धा सागर है ना, वो यानी अढ़ाई यानी 25 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य। अभी वो पल्लों के समय गिनो। हाँ तो सागर है द्वीप सागर इतने ढाई सागर है, ऐसा कहने का अर्थ क्या? अढ़ाई सागर में जितनी समयों की संख्या है उतने द्वीप और समुद्र है। एक राज्य में इतने, यानी वो संख्या कितनी होगी? असंख्यात कहने से भी, असंख्यात का भी पहले संख्या नाप हम जानेंगे ना, तो चक्कर छूट जाए इसे। ये डायरेक्ट हम अनंत पर आ गए ना, ये कोई अनंतता उसकी भाषित नहीं हो रही है, पहले असंख्यात को देखना चाहिए। देखो देखो यहाँ क्या पूछा, क्या बताया? काल की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के द्वारा अपहृत नहीं होते, यानी अनंतानंत उत्सर्पिणी और असर्पिणी के जितने समय है, समय ना वो कम पड़ेंगे, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उसके द्वारा बाद नहीं हो जाएंगे, उससे ज्यादा है। शंका, शंकाकार कहते हैं क्षेत्र प्रमाण को उल्लंघन करके काल प्रमाण का कथन क्यों किया जा रहा है? देखो क्या है, ये जो अलौकिक मान है ना, संख्या मापने के मान होते हैं, ये द्रव्यमान यानी संख्या बताना, 1 2 3 4 इसको द्रव्यमान कहते हैं। क्षेत्र मान यानी क्षेत्र की अपेक्षा हम संख्या को बताते हैं, जैसे हमें जीव में कितने प्रदेश है, धर्म द्रव्य में कितने प्रदेश है, बोलो? हाँ, लोक में जितने प्रदेश है उन प्रदेशों की जितनी संख्या है उतने एक जीव में प्रदेशों की संख्या है, या काल द्रव्य कितने हैं हमको गिनने ना, 1 2 3 4 गिनने हैं, तो हम कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात है, यानी वहां क्षेत्र की अपेक्षा काल द्रव्य के संख्या बताइए। क्षेत्र में हमने गिनी उसको, क्षेत्र में ने लोक में जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य है, तो पहला हुआ द्रव्यमान यानी डायरेक्ट संख्या बताना, उसको द्रव्यमान कहते हैं। क्षेत्रमान यानी उस जितने विशिष्ट क्षेत्र में जितने नंबर ऑफ प्रदेश है उतनी संख्या बताना, उसको क्षेत्रमान कहते हैं। कालमान यानी विशिष्ट टाइम में, मान लेते एक सेकंड है, एक आवली है या एक अंतर्मूर्त है, तो काल में जितने समय है उतनी संख्या बताना, ये काल जो अभी यहाँ बताया ना अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से भी ज्यादा है, यानी उसमें जितने अनंतानंत समय है उससे भी मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है, यानी काल की अपेक्षा हमने संख्या बताई, उसको कालमान कहेंगे। और भावमान यानी जितने अविभाग प्रतिच्छेद आदि आदि जो बातें होगी, कहीं कहीं आता है ऐसे कि ये अग्रु लघु गुण के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उतनी संख्या कहेंगे वहां, ऐसा कहीं कहीं आता है, अनंत बताना है ना वहां उसकी बात। देखो क्या कहते हैं, शंका क्या पूछी, यहाँ शंका ऐसे पूछते हैं, क्षेत्र प्रमाण को उल्लंघन करके, यानी द्रव्यमान क्षेत्रमान कालमान और भावमान, तो क्षेत्रमान को लिए बिना काल की क्यों बात की पहले? ख्याल प्रश्न क्या ख्याल में, क्षेत्र प्रमाण को उल्लंघन करके काल प्रमाण का कथन क्यों किया जा रहा है? यानी काल की बात पहले क्यों उठाई? समाधान, जो स्थूल और अल्पवर्णनीय होता है उसका पहले ही कथन करना चाहिए। इस न्याय के अनुसार पहले काल प्रमाण का कथन किया जा रहा है। स्थूल यानी जो उसी की बात पहले करेंगे जो अपने ख्याल में आने योग्य है, क्योंकि काल को तो हम इमेजिन करते हैं, परंतु इतने क्षेत्र में कितने प्रदेश है तो उसकी अनंतता अभी अपने ख्याल में नहीं आती है, असंख्यात या अनंतता जो कुछ है वो। क्या कहते हैं? जो स्थूल और अल्प वर्णनीय होता है उसका पहले ही कथन करना चाहिए। इस न्याय के अनुसार पहले काल प्रमाण का कथन किया जा रहा है। शंका, काल प्रमाण की अपेक्षा क्षेत्र प्रमाण बहुवर्णनीय कैसे है? यानी वो ज्यादा सूक्ष्म है या बहुवर्णनीय है, ये कैसे हो सकता है? उसका समाधान, क्षेत्र प्रमाण में लोक प्ररूपण करने योग्य है। क्षेत्र प्रमाण में हम लोक की बात करते हैं, एक लोक में कितने प्रदेश है आदि, उसका भी जगत श्रेणी के प्ररूपण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अभी लोक कितना बड़ा है तो हमको कहना पड़ेगा सात राजू भाई सात राजू भाई सात राजू, यानी 343 घन राजू है, बराबर है ना? तो जो एक सात राजू हमने देखी श्रेणी में, हम लोक को क्यूबिक अगर इमेजिन करते हैं, सभी लोग जो ऐसा अलग अलग शेप वाला है उसको सब सभी ओर से ऐसा इक्वल कर दो तो कितना होगा? सात राजू भाई सात राजू भाई सात राजू हो जाएगा। नहीं मालूम आपको? देखो ऐसा तो सर्वत्र दक्षिणोत्तर तो सात राजू है ही, तो हमने सात गुना लिखा। अभी पूर्व पश्चिम कितना है? ऊपर एक राजू है, बीच में पांच राजू है, फिर एक राजू है, फिर सात राजू है। चार जगह के माप लेना और उसका 1/4 करना तो एवरेज आएगा, बराबर 1+1 बीच वाला 2 हो गया और 5 7 हो गया और यहाँ के 7 14 हो गया और डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो 7 × 14/4 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट सर्वत्र 14 राजू, तो 14 राजू, तो इसको हम इसको 7 बना दिया और इसको भी 7 बना दिया तो इक्वल हो गया ना। हाँ बिल्कुल सही एवरेज है, बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर कुछ नहीं है। आप ये जो शेप है ना उसको ऐसा काट कर दो एंगल एंगल और उसको एक दूसरे में फिट कर दो, वो भी पूरा ऐसा ही बैठेगा। ये 7 राजू रखना और यहाँ के 2 टुकड़े करके इसके इसमें बैठा देना ऐसा, तो 7 राजू बराबर हो जाते हैं। हमने देखा ना अभी लोकाकाश को एवरेज करके 7 × 14/4 × 14 अभी ख्याल आता। हाँ तो इसलिए हाँ 343 कैसे होता है? तो 7 × 7 49 हो गया 49 और उसको और 7 से गुणा करो 343 घन राजू कहना अभी, क्योंकि 3 डायमेंशंस को हमने लिया है। इसको लोक कहते हैं। तो लोक को समझाने के लिए जगत श्रेणी ये एक एक डायमेंशन हुई ना, हम देखे ना ऊंचाई और ये चौड़ाई और ये जो कुछ पौड़ाई है उसकी एक एक डायमेंशन को एक ये जगत श्रेणी, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी जगत प्रतर और जगत प्रतर गुना और एक साथ राजू करेंगे तो जगत घन हो जाएगा, घन स्वरूप लोक हो जाएगा। तो जगत श्रेणी का अर्थ होता है 7 राजू, जगत प्रतर का अर्थ होता है 49 स्क्वायर राजू, प्रतर राजू जिसको कहते हैं राजू स्क्वायर, और लोक या जगत घन का अर्थ होता है 7 राजू × 7 राजू × 7 राजू यानी 343 घन राजू। तो यहाँ क्या कहते हैं कि क्षेत्र प्रमाण बहुवर्णनीय है ना, क्या उसको समझाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है उसमें। कैसे? तो सबसे पहले लोक का प्ररूपण करने योग्य है, बराबर, उसका भी जगत श्रेणी के प्रमरूपण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। आपने कहा ना अभी तक ख्याल में नहीं आता था, तो जगत श्रेणी यानी सात राजू, तो सात राजू समझाए बिना लोक क्या है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए जगत श्रेणी का प्ररूपण करना चाहिए।
देखो यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा बता रहे हैं, तो पहले में पहले क्षेत्र बताने के लिए लोक बताना पड़ेगा, अभी लोक समझाने के लिए हमको जगत श्रेणी समझनी पड़ेगी, जगत श्रेणी समझने के लिए आगे एक एक बात अभी चालू हो जाएगी।
अब जगत श्रेणी का भी यानी सात राजू समझने के लिए भी रज्जु के प्ररूपण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, यानी एक राजू कितना है वो समझाना पड़े, इसलिए रज्जु का प्ररूपण करना चाहिए। अब रज्जु समझाना है, वो रज्जु में कितनी संख्या है, तो रज्जु का भी उसके अर्धच्छेदों का कथन किए बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्धच्छेद उसके आधे का आधा का आधा का आधा का आधा करो, है ना, इसलिए रज्जु के छेदों का प्ररूपण करना चाहिए। रज्जु के छेदों का भी द्वीपों और सागरों के प्ररूपण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, उसके अर्धच्छेद क्यों करना है, क्योंकि हम देखते ना कि जितने द्वीप और सागर हैं सबसे बीच में जम्बूद्वीप है, उससे दुगुना आगे का समुद्र लवण समुद्र, उससे दुगुना क्षेत्र, उससे दुगुना समुद्र, उससे दुगुना क्षेत्र, इस तरह से अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक जाओ, और ऐसा आता है कि कहीं भी आपको एट एनी गिवन पॉइंट, अभी हम जितना मालूम है उतने तक ही गिनते हैं, थोड़ा एक जम्बूद्वीप है 1,00,000, लवण समुद्र है 2,00,000, आगे धातकी खंड है 4,00,000, आगे का समुद्र है कालोदधी 8,00,000, और पुष्कर है 16। अभी अर्ध पुष्कर पुद्गल की नहीं, अर्ध पुष्कर की बात नहीं करेंगे, 16। अभी हमको यहाँ लवण समुद्र से लेते हैं, हम लवण समुद्र के आगे वाला धातकी द्वीप, अभी यहाँ हम देखते हैं ये जम्बूद्वीप का आधा है ना इतने यहाँ पर, तो ये इसकी 4,00,000 चौड़ाई है, परंतु उसके अंदर वाले कितने हैं, 2 और यहाँ आधा, 2.5 ही है, अंदर वाले से भी वो बाहर वाला जो है वो 1,50,000 योजन से ज्यादा है। आगे की बात करेंगे, जो 8,00,000 योजन चौड़ाई है, कहाँ, कालोदधी समुद्र है ना ये, बराबर, ये 8,00,000 योजन है उसकी चौड़ाई, उसके अंदर वाले सभी द्वीप समुद्रों के एक साथ गिन लो तो 1.5 से ज्यादा, 4, 2, 6 और 1, 6 और आधा, 6.5 है, 6.5 से ये 1.5 लाख योजन से ज्यादा है, उस 1.5 लाख योजन से ज्यादा है। अब ये 16 है, पुष्कर द्वीप पूरा है वो 16,00,000 योजन का है, ये 16,00,000 योजन है, तो अंदर के सभी द्वीप समुद्र मिलकर कितने हैं, 8, 4, 12, 2, 14 और आधा, 14.5। हाँ, अब इससे क्या सिद्ध होगा, स्वयंभू रमण समुद्र कितना है, तो मध्य से लेकर जितने सारे असंख्यात द्वीप समुद्र है उसमें 1.5 लाख योजन मिला दो तो स्वयंभू रमण समुद्र आ जाएगा, यानी अंदर के असंख्यात द्वीप समुद्र एक बाजू और ये अकेला एक समुद्र एक राजू, यानी एक साइड आधा राजू की है, सेंटर पॉइंट से ले लो आप, सुमेरु पर्वत के सेंटर से ले लो, तो वहाँ एक बाजू गिनना है हमको, आधा राजू आएगा, तो आधा राजू में 2 हिस्से करना, उसके अंदर वाला हिस्से में 1.5 लाख योजन कम रखना और बाहर वाले में 1.5 लाख योजन ज्यादा रखना, आधे से आधा यानी पाव है ना, 1/4 राजू है, राजू का माप निकालना है ना, तो अकेला स्वयंभू रमण समुद्र दोनों ओर का अगर देखेंगे हम तो आधे राजू में तो स्वयंभू रमण समुद्र है, उसमें भी 1.5 लाख योजन ज्यादा मिला दो, यानी स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा और वो राजू का भी कितना प्रचंड माप होगा, कि असंख्या द्वीप समुद्र पर एक और अकेला एक स्वयंभू रमण समुद्र एक और। यहाँ वही समझाते हैं कि क्षेत्र समझाने के लिए वो जगत श्रेणी समझाना, उसके लिए एक राजू समझाना, राजू के लिए द्वीप सागरों को समझाना, क्योंकि राजू में यही तो हम समझाएंगे ना, एक द्वीप सागर, द्वीप सागर, द्वीप सागर, एक एक भी गिनेंगे उसको, उनकी संख्या गिननी, अभी उसके क्षेत्र भूल जाओ, एक एक लाख है, दो लाख है, चार लाख है, वो भूल ही जाओ, एक द्वीप है, एक सागर है, एक द्वीप है, एक सागर है, एक द्वीप है, एक सागर है, सबकी संख्या कितनी होगी। तो इसलिए वो अर्धच्छेद निकाल रहे राजू के, उसको दो दो से डिवाइड करते जाओ, तो जितने होंगे उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है। अब उसके लिए क्या कहते हैं, देखो चौथी लाइन, रज्जु का भी उसके अर्धच्छेदों का कथन किए बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए रज्जु के छेदों का प्ररूपण करना चाहिए। रज्जु के छेदों का भी द्वीपों और सागरों के प्ररूपण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, है ना, ये अभी जो बताया, ये द्वीप सागरों के भी वहाँ कथन करना पड़ेगा, इसलिए द्वीपों और सागरों का प्ररूपण करना चाहिए। परंतु काल प्रमाण में इस प्रकार बड़ी प्ररूपणा नहीं है। काल तो समझा सकते हैं कि ये समय इतने असंख्या समयों की आवली होती है, सैकड़ों आवली का एक सेकंड होता है, वगैरह वगैरह। इसलिए काल प्रमाण की प्ररूपणा की अपेक्षा क्षेत्र प्रमाण की प्ररूपणा अति सूक्ष्म रूप से वर्णित है, यानी वर्णन करने के लिए उसको ज्यादा बहुवर्णनीय कहे ना उसको, यह बात जानी जाती है। कितने ही आचार्य ऐसा कथन करते हैं कि जो बहुत प्रदेशों से उपचित होता है वह सूक्ष्म होता है, कहा भी है, यानी किसी किसी आचार्यों का क्या मत है वो वहां लिखते हैं, ऊपर गाथा है, हा? उपचित यानी उससे प्रदेशों से सहित होता है, उपचित होता है, क्योंकि है ना क्षेत्र के प्रदेश जो है वो काल के समयों से भी सूक्ष्म है, ऐसा कहना चाहते हैं। इन्हें क्षेत्र में अभी ये जो अंगुल कहेंगे इसमें कितने हैं, तो उसमें द्रव्य का प्रमाण कितना है, द्रव्य के उन्होंने प्रदेशों की संख्या निकालनी है। अभी देखो यहाँ पुद्गल के परमाणु की संख्या भी हो सकती है और वहाँ प्रदेशों की संख्या भी हो सकती है, एक्चुअली आकाश के प्रदेश इसमें कितने हैं ऐसा भी कह सकते हैं और इसमें परमाणु कितने हैं वो भी कह सकते हैं, ख्याल है ना, हाँ? यहाँ जो है ना अंगुल कहेंगे, अंगुल में इसमें प्रदेशों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, असंख्यात होगी। पुद्गल अनंत है, ये तो प्रदेशों की संख्या नहीं असंख्यात ही होगी, क्योंकि लोकाकाश तक सभी असंख्यात ही है, आप अंगुल कहो या फुट कहो या कुछ भी कहो, उसमें असंख्यात प्रदेश होंगे। अब हमको कोई संख्या पल्ल्य में बतानी है तो हम कहेंगे वो पल्ल्य प्रमाण है, कोई चीज हमको संख्या बतानी है तो पल्ल्य में जितने समय है उतने हैं ऐसा हम कहेंगे, या हमको क्षेत्र में बताना है तो क्या कहेंगे, सुचंगुल में जितने प्रदेश है उतने हैं, दोनों ही असंख्यात है, पल्ले भी असंख्यात है और सुचंगुल के प्रदेश भी असंख्यात है, तो कौन सा बड़ा होगा, बोलो विनोद भाई, एक पल्ले में कितने समय, एक पल्ले के असंख्यात भाग में असंख्यात करोड़ अबज वर्ष होते हैं और उनके समय गिनो, उतनी संख्या हमको बतानी है, काल में हम संख्या गिन रहे हैं। और सुचंगुल कहते हैं अंगुल, सुचंगुल यानी सिंगुलर लाइन, प्रत्रांगुल यानी अंगुल गुना अंगुल, और घनांगुल यानी अंगुल गुना अंगुल गुना अंगुल, थ्री डायमेंशनल घन स्वरूप, जैसे हमने लोक में देखा था ना सात राजु गुना सात राजु गुना सात राजु, वैसे सुचंगुल सिंगल लाइन में हम ले रहे हैं, सुचंगुल यानी सिंगल लाइन, उसमें प्रदेशों की संख्या, हमको तो संख्या से मतलब है, प्रदेशों द्रव्यों की नहीं, प्रदेशों की, द्रव्य तो अनंत में चले जाएंगे, सुचंगुल में प्रदेशों की संख्या और पल्लों में समयों की संख्या, कौन सा बड़ा होगा, हाँ सूचक उंगली आप क्या कहते हैं? नहीं, कांट इमेजिन। आप क्या कहते हैं बंदा बहन? हाँ, बड़े हो गए क्यों? उसका उत्तर भी देना चाहिए। खाली एक ने ये पार्टी ली तो दूसरे ने दूसरी, वो नहीं चलेगा। जानना चाहते कितना बड़ा है? हाँ देखो, अभी हमने द्विरूप वर्ग धारा देखी थी। द्विरूप धारा में पनट्ठी वगैरह देखी ना, ऐसे आगे चले जाओ, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ल्य आता है। असंख्यात स्थान जाने पर पल्ल्य जिस स्थान पर आया है, उस जितने स्थान पर पल्ल्य आया है, अभी हमने वर्गशाला का देखी। मान लेते इसकी वर्गशाला का 100 है, तो उतने ही वर्गस्थान आगे चले जाना, यानी जिसकी वर्गशाला 200 होगी वर्गशाला का, वहां सूचंगुल होता है। यानी पल्ले के वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग करते जाओ, कितने बार, जितने असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले आया था, उतने ही असंख्यात पल्ले का वर्ग करो, पल्ले तब जाके सूचंगुल आएगा। तो सूचंगुल में अंदाज से कहा आपने, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि लगता तो मेरे पल्ले कितना बड़ा होगा, सूचंगुल तो इतना छोटा है, मगर प्रदेश कितना सूक्ष्म है ये ख्याल नहीं आता। आपने ख्याल है ना, जब हम कहते सुई के नोक बराबर, वो असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये प्रदेशों की और समयों की सूक्ष्मता ख्याल में आए ना। देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ, कितने ही आचार्य ऐसा कथन करते हैं कि जो बहुत प्रदेशों से उपचित होता है वह सूक्ष्म होता है, यानी जहाँ ज्यादा प्रदेश है वो ज्यादा सूक्ष्म होगा। हाँ, उपचित यानी युक्त। कहाँ भी है, अभी ऊपर गाथा पड़ेंगे। सुहुमो यहवदि कालो तत्तो यसुहुमदरम हवदि खेतम अंगुला संख भागे हवंती कप्पा असंख्य जा। देखो यहाँ बात आ गई, क्या कहते हैं, काल प्रमाण सूक्ष्म है और क्षेत्र प्रमाण उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि अंगुल के असंख्यात वे भाग में असंख्यात कल्प होते हैं। क्या है ना, एक कल्प काल कितना है, अभी पल्लियों की बात भूल जाओ, कल्प कितना बड़ा है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प होता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिलाकर एक कल्प काल कहते हैं। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प, ऐसे असंख्यात कल्प कहो वो कितने हैं, अंगुल के असंख्यात वे भाग हैं, यानी अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने प्रदेश है, और यहाँ असंख्यात कल्प कालों में जितने समय है, असंख्यात कल्प कालों के समयों से भी असंख्यात गुणे अंगुल के असंख्यात वे प्रदेश में, उसमें प्रदेश है। हाँ, इसलिए क्षेत्र को सूक्ष्म कहा। परंतु उनका इस प्रकार का व्याख्यान करना घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर क्षेत्र प्ररूपणा के अनंतर द्रव्य प्ररूपणा का प्रसंग प्राप्त होता है। द्रव्य प्ररूपणा यानी डायरेक्ट संख्या बताना, और क्षेत्र प्ररूपणा यानी क्षेत्र की अपेक्षा प्रदेशों की संख्या बताना। शंका, यह कैसे, क्योंकि अनंत परमाणु रूप प्रदेशों से निष्पन्न एक द्रव्यांगुल में अवगाहना की अपेक्षा एक क्षेत्रांगुल ही है। क्या कहते हैं, ये प्रदेशों के यानी परमाणु की अपेक्षा हम देखते हैं, तो सूचंगुल में परमाणु, अंगुल में परमाणु कितने हैं, अनंत है, परंतु अंगुल में सूचंगुल जितना क्षेत्र कितना है, तो एक है। ख्याल है ना कि अनंत परमाणु रूप प्रदेशों से निष्पन्न एक द्रव्यांगुल में, उसको द्रव्यांगुल का अवगाहना की अपेक्षा एक क्षेत्रांगुल है, उसकी अवगाहना हम नापते हैं, अवगाहना ने प्रदेश कितने व्याप्य है, तो उसको हम एक क्षेत्रांगुल कहेंगे, इसको एक क्षेत्रांगुल कहते हैं, परंतु उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो अनंत है। परंतु गणना की अपेक्षा अनंत क्षेत्रांगुल होते हैं, इसलिए जो इसको हम कल देखेंगे। इसलिए जो बहुत प्रदेशों से उपजित होता है वह सूक्ष्म होता है, यह कहना ठीक नहीं है। ये बात हम कल इसको दोबारा और समझेंगे। अधिक जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो।